نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير عرش الهي حقیقت اور تقاضے. آج اس کورس کا ہمارا ڈے فور ہے اور ہم اس میں شروع میں ہر دن ایک دعا کر رہے ہیں اور وہ دعا جس کے اندر عرش کا تذکرہ ہے. آئیے دیکھتے ہیں آج کی ہماری دعا کیا ہے. یہ دعا ہم تک پہنچی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حدیث ہے سنن ابن ماجہ 3831 نمبر. بڑا پیارا واقعہ ہے. آپ جب حدیث کو ساتھ لے کر دعاؤں کو سیکھتے ہیں تو آپ کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا حالات ہوتے تھے جس وقت کہ آپ یہ دعائیں سکھاتے تھے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کون تھی؟ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک خادم طلب کیا, یعنی کام کر کر کے تھک گئی ہوں, ایک خادم مل جائے. تو آپ نے ان سے فرمایا میرے پاس تو خادم نہیں ہے جو میں تجھے دوں. یہ سن کر وہ واپس چلی گئی. اس کے بعد آپ خود ان کے پاس تشریف لائے. باپ تھے نا آپ, ذرا سے انسانی رشتوں کے ساتھ دیکھیے باپ اور بیٹی کا تعلق. آج باپوں کی کمر دوہری ہو جاتی ہے بچیوں کی خوشیوں کے موقع پہ چیزیں جمع کرتے کرتے. ڈبل جاب کرنی پڑے, خود اپنے پیٹ پہ پتھر بھی باندھنا پڑے, نہ بھی ہو. کتنے قرضوں میں ڈوب جاتے ہیں ماں باپ آج خوشیوں کے نام پہ. دنیا کا سب سے خوبصورت باپ اور دنیا کی سب سے خوبصورت بیٹی, کہ جس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے. جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. اور فاطمہ وہ جن کو دنیا میں سیدت النساء الجنہ کا لقب ملا. اور فاطمہ وہ ہیں کہ جو نبی کے بیماری کے دنوں میں آپ کے پاس آتی ہیں اور آپ کان میں کوئی بات کہنا چاہتے ہیں اور یہ سن کر رو پڑتی ہیں, اور دوبارہ جب پھر ایسا ہی عمل ہوتا ہے تو آپ مسکرا دیتی ہیں. بعد میں حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ فاطمہ اس دن کیا ہوا تھا, تو کہنے لگی کہ پہلی دفعہ اللہ کے نبی نے میرے کان میں کہا کہ فاطمہ میرے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا, میں یہ سن کے رو دی. اور جب دوسری دفعہ کہا تو میں مسکرائی کہ آپ نے کہا تھا کہ فاطمہ سب سے پہلے تو مجھے ملے گی. اللہ کے نبی کے دنیا سے جانے کے 6 ماہ کے بعد حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا تھا اور جنت کی عورتوں کی سردار بھی بنی. ایسی پیاری لاڈلی بیٹی, ہم سب جانتے ہیں کہ ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے چکی پیس پیس کے. آج کا ہمارا ٹاپک آ رہا ہے یوتھ کا, انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ آج ہم کتنے بگڑے ہوئے ہیں, ہم کتنے سپائلڈ ہیں. اور آج وہ بچے جن کو خوش کرنے کے شوق میں جوانی بڑھاپے میں بدل گئی اور سیدھی کمر جھک گئی, وہ پھر بھی نہ خوش ہوئے. تو یہاں ذرا سا باپ بیٹی کے تعلق کو بھی محسوس کریں. ہم بھی بیٹی ہیں ایسے ہی نا, چلے ہم میں سے ہر ایک ماں تو نہیں ہوگی نا, ان میرڈ بھی ہو سکتا ہے کوئی اور جس کے پاس بچے نہیں ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن بیٹی تو ہم ہر ایک ہے نا. آج ہیں کہ نہیں باپ, کبھی تھے نا, ذرا سا اپنے اور اپنے والد کا تعلق محسوس کیجئے. اور اگر وہ نہیں ہے دنیا میں اور اگر ہیں بھی تو پڑھیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ ہمارے ماں باپ پہ رحم فرما جیسے کہ انہوں نے رحم فرمایا ہم پر جب کہ میں بچہ تھا. ماں باپ کے ساتھ انسان کا تعلق جو ہوتا ہے نا, یہ کوئی لفظی تعلق نہیں ہے, یہ رسمی تعلق نہیں ہے, یہ بڑا سچا تعلق ہوتا ہے. دنیا میں آنے سے پہلے جڑتا ہے اور جانے کے بعد بھی رہتا ہے. اور ایک بات دیکھی گئی ہے, بس صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی, کہ بیٹیوں کو باپوں سے زیادہ پیار ہوتا ہے ماؤں کی نسبت, اور ماؤں کو بیٹوں سے زیادہ پیار ہوتا ہے بیٹیوں کی نسبت. یا پھر بیٹی سے پیار ہوتا ہے جب وہ دکھی ہوتی ہے, اپنے گھر خوش ہوتی ہیں اور ذرا بچوں کو لے آئے تو تھوڑے گھنٹوں بعد ماں کا بھی چاہ پورا ہو جاتا ہے, لے جاؤ ان کو اب گھر, تنگ کر رہے ہیں, شور کر رہے ہیں. پوتے پوتیوں کو کھلاتے پلاتے بندہ کھلتا ہے, بیٹیوں کے بچے مشکل. اور اللہ نہ کرے کوئی بیٹی پلٹا دی جائے اور ساتھ بچے بھی ہوں تو سارے لاڈ پورے ہو جاتے ہیں, یہ ایک فطری سی بات ہے. تو حضرت فاطمہ صلی اللہ کے نبی کو بہت محبت تھی. کیا دل پہ گزری ہوگی जब ये कहा होगा कि मेरे पास तो खादिम नहीं है जो मैं आपको दूं, और मुझे यहां सूरत बकरा में 10वें पारे के बिल्कुल आखिर की वो आयत भी याद आ रही है कि नेकियों के जज्बे में चूर सहाबा कराम जब तबूक के मौके पे सवारियां तलब करने आए तो नबी के पास देने को सवारी नहीं थी, और कहा मेरे पास है ही नहीं जो मैं तुम्हें दूं, और वो पलट रहे थे तो क्या था, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इन इमोशंस को महसूस किया करें ताकि आपको ये दीन और ये इस्लाम कुरान पैगाम इसका ये रियलिटी लगे। तो बेटी चली गई, बाद में खुद पहुंच गए बेटी के पास। अब सुनिए क्या कहते हैं, फरमाया जो चीज तुमने तलब की थी वो तुम्हें ज्यादा पसंद है या इससे बेहतर चीज तुम्हें बताऊं। अंदाज देखिए आप, यानी आज की जुबान में कह के बेटी आईफोन मांग रही है और वो वी प्लस, और बेटा जो है वो टेस्ला गाड़ी मांग रहा है। हमारी जुरत है नो कह सके। याद रखिए ये हाथ पॉकेट मनी जब इस हाथ में आता है ना तो बंदे को बाप जो है वो खातिम ताई लगता है। पूरा महीना इंतजार करके एंड पे पॉकेट मनी लेना, ये पैसा नहीं होता, ये ताल्लुक होता है, मोहब्बत होती है, कुर्ब होता है। और आज वो कहते रहने दे हमें नहीं चाहिए, हम खुद कमाते हैं, हम समर जॉब कर लेंगे, हम आपस में आएंगे, ये कर लेंगे वो। नुकसान क्या हुआ कि जब फिर उनको हमारी जरूरत पड़ती है तो हम अवेलेबल नहीं होते हैं। हम मशीनें ला देंगे, हम दबाने वाली कुटने वाली नपने वाली मसाजिर नौकर रख देते हैं, सारा वक्त अम्मा जी के पास ही रहे, लेकिन हम खुद नहीं होते। तो उनको तो चाहिए आपके हाथ, मशीन में वो कहाँ गुदाज है जो आपके हाथों में। और वो मासी कितनी भी प्रोफेशनल क्यों ना हो तो वो जो गर्मी आपके हाथों की जानी थी और उसको सेक पहुंचना था वो तो नहीं है ना। तो आज हम मशीनें बन गए, हमारे बच्चे हजारों कमा रहे हैं। एक यंग बच्ची बच्चा 20 से 25 साल की उम्र में मेरा साथी कमाने के यहाँ 25 से 30 हजार करोड़ कमाता है, और इससे भी ज्यादा हो सकता है। लेकिन इस पैसे ने उनके दिल में अपने सेल्फ सफिशिएंट होने का और माँ बाप से कुछ ना मांगने का एहसास डाल दिया। ये बात पहले कभी हमारे यहाँ बेटों में कही जाती थी कि मैंने अपनी शादी खुद करनी है, अब बेटियां भी ये कहती हैं हम पहले अपने पाँव पे खड़े हो लें। और इसी तरह से वो जिम्मेदारियां जो कभी एक लड़की या औरत के कंधों पे 10 10 12 20 20 साल की शादी के बाद नहीं पड़ी होती थी, अल्लाह सलामत रखे बाप को और बाद में शोहर, वो यंग अनमेरिड बच्चियों के इस वक्त कंधों पे है। घर खरीदना है क्योंकि मियाँ को बुलाना है, मियाँ को नहीं भी बुलाना है तो घर तो चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, फिर माड़ी मोटी गाड़ी भी नहीं लेनी हमने, यूज भी नहीं चाहिए, और जब लोन देने वाले दे रहे हैं तो फिर हम क्यों ना करें, बात दूसरी तरफ चली जाएगी। हम सिर्फ जात में अगर जी रहे हैं ना तो हमारी नस्लें नहीं बचेंगी, सॉरी। फिर आप मत रोइएगा कि बच्चा खराब हो गया तो बच्ची खराब हो गई, ये खराब खरूब कोई नहीं थे, अल्लाह ने ठीक ठाक भेजे थे, ये हमने खराब किया। हम सब देखे कि हम इस वक्त जिस दुनिया से गुजर के जा रहे हैं हम क्या दे कर जा रहे हैं, और अल्लाह का नबी इतनी प्यारी बेटी फातिमा के जिसके हाथों में छाले पड़े हैं और बाप कह रहे हैं कि उसके पास उसको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तो आप अपनी बेटी के घर जाते हैं, आगे कंटिन्यू करके देखिए, कहा जो चीज़ तुमने तलब की थी वो ज्यादा अच्छी कि ये, यानी अंदाज तो देखिए ना नबी का। तो फातिमा का जवाब क्या होगा इससे आगे, जरा कोई बताएगा कि नहीं नहीं जो मैंने मांगा मुझे वही चाहिए, ये भी एक गम है। सोने जैसी चीज माँ बाप ला देना तो बच्चे नहीं खुश होते, क्यों नहीं होते पता, वो नहीं दिया जो मैंने चाहता। अक्सर माएं कहती हैं आज की बेटियां सोना नहीं लेती, ट्रेंड चल गया, तो बड़ी अच्छी बात है कि वो डायमंड मांगती हैं। सोना आज आप 1 लाख 25 30 40 हजार रुपये भी ले लेते हैं ना, ये आजकल जो फास्ट फॉरवर्ड का बटन है ये 2 3 साल बाद कम से कम उतने का मिल जाएगा जितना सुनारा ले गया आपसे 30 35%। हर साल 25% सोना महंगा हो रहा है, जो 2 साल पहले कह लीजिए कि 1 लाख की चीज बनती थी इस वक्त वो 1.5 लाख की बनती। तो चलो कभी जिंदगी में कोई दुख सुख आ गया तो उसको यूज करेगी, लेकिन डायमंड वो जो आज खरीदो तो कल उसकी जीरो वैल्यू है, नथिंग। तो वो क्या कह रहे हैं नबी अपनी बेटी को जो चीज तुम चाहती हो वो अच्छी है या जो मैं दूंगा वो अच्छी है। तो बेटी का जवाब सुन लीजिए। आप कहने लगी, खुद तो नहीं बोली, हजरत अली बैठे थे, दामाद अली रजी अल्लाह अन्हों ने फातिमा से कहा रजी अल्लाह अन्हा, तुम कहो। ये देखिए शोहर कैसे अच्छे दामाद ढूंढ के दिए थे अली जैसे। तुम कहो कि नहीं, बल्कि मुझे वो चीज ज्यादा पसंद है जो खादिम से बेहतर हो। यानी उनको डर लगा कि शायद ये ना समझी मैं थकी हुई जो इतनी, ये कि नहीं, अल्लाह ने भी मुझे खादिम ही चाहिए। तो इससे पता चलता है कि बेटियों को उनसे ज्यादा दीनदार शोहर दीजिए। तो जब पहले ही बिगड़ी और उससे और बिगड़ा हुआ मिल जाएगा तो वो तो शुक्र करेगी कि मैं और बिगड़ूं। तो अली रजी अल्लाह अन्हु का ये मशवरा, कहने लगे कि ये कहो कि मुझे वो पसंद है जो आप कहें। अल्लाह अकबर, कहने लगी मुझे वही पसंद है जो आप कहेंगे। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम ये कहा करो। तो हजरत फातिमा जो एक बेटी थी उसको मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो एक नबी भी थे, रसूल भी थे और बाप भी थे, उन्होंने सिखाई। और आज आप और मैं कितने खुशकिस्मत है कि हम ये दुआ सीखने लगे। ठीक है, शुरू करते हैं। अल्लाहुम्मा रब्ब समावाते सभी व रब्ब अर्शिल अजीम रब्बना व रब्ब कुल्ली शयिम मुनजिलत तौराती वल इंजील वल कुरआनिल अजीम أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي الندين واغننا من الفقر آمين. اسمیں آپ نے دیکھا کہ تین کتابیں آسمانی کتابیں جو تین معروف किताबें तौरात इंजील और कुरान का तذکرہ, फिर अर्श अजीम का तذکرہ, और अल्लाह के पहले होने और आखिर होने का जिक्र सुनना है तो सूरत हदीद की शुरू की आयतें ले लें, या फिर आप अल अस्माउल हुस्ना की सीरीज में इन दोनों नामों को सुन लीजिए। तो क्या पता चला कि जब अल्लाह से ताल्लुक बनता है तो दुआओं में रंग लग जाता है। नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं। डे ऑफ जजमेंट स्टेप बाय स्टेप, मरने के बाद क्या होगा। रूह के सफर से शुरू कर चुके, माँ के पेट की जिंदगी हम गुजार चुके, दुनिया इसमें आज हम यहाँ हैं। यहाँ ईमान वाले भी हैं, मुनकरीन भी हैं। यहाँ से जाएंगे आगे तो कब्र हमारा अगला ठिकाना है। कब्र में भी मुनकिर भी जाता है, ईमान वाला भी जाता है। कब्रों के टाइम को यानी दुनिया से जाने से लेके कयामत के आने तक के वक्त को आलमे बरजख कहते हैं। बहुत लंबा होगा, इस दुनिया की जिंदगी ज्यादा से ज्यादा 60, 70, 80, 90, 100 साल। नॉर्वे में 100 साल वाले बूढ़ों को जाकर देखिए, हड्डियों के ढांचे, इबरत की तस्वीरें। चलिए 100 साल भी जी लिए तो क्या हुआ, फिर आलमे बरज़ख। कब्र में जब जैसे रहेंगे अपने अमाल की रोशनी में होंगे, उसके बाद क्यामत शुरू होगी। वो कहते ना क्यामत टूट पड़ी। तो जब क्यामत टूट पड़ेगी तो हम देख चुके कि कब्रों से निकलने की कैफियत मुख्तलिफ होगी। ईमान वाले की कब्र से निकलना ईमान वाले का, और मुनकिर का कब्र से निकलना मुख्तलिफ होगा। फिर हमने सूर के मुख्तलिफ स्टेप्स पढ़ लिए, पहला सूर, दूसरा जिसके साथ ही तीसरा मिला लिया जाता है, और सब सूर के बाद जब तीसरे नफखे यानी नफखतुल बास से गुजरेंगे तो दोबारा जिंदा किए जाएंगे, और सब का रुख मैदाने महशर की तरफ होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाहियां, मुकामे महमूद, शिफात, सब कुछ याद है। फिर वहां ईमान वाले और मुनकरीन सब होंगे। हशर की जमीन के बारे में हमने पढ़ा, सफेद होगी बिल्कुल, किसी ने खून भी नहीं उस पर बहाया होगा और कुछ छुप ना सके। फिर उधर से हिसाब किताब के मरहले होंगे, ईमान वाले और मुनकिर सा सा चल रहे हैं अभी तक, आगे जाकर आप देखेंगे रास्ते अलग हो जाएंगे। हम जिस चीज पर इस वक्त थे वो आमालनामे, और उसी के अंदर फिर मीजान और हौजे कौसर। और यहां हम देख रहे हैं कि अहले ईमान के इम्तिहान कैसे होंगे। चंद बातें इसी के अंदर ऐड करते हुए हम इंशाल्लाह अगले इसके मरहले पे चलेंगे। तो मैदाने हशर में लोगों के साथ जो कुछ होने वाला है, कि लोगों के आमालनामे में नेकियां तुलेंगी। एक जुमला लिखिए, एक नेकी की ज्यादती और एक नेकी की कमी। लोगों के जन्नती या जहन्नमी होने का फैसला कर देगी। बड़ा सोच के नो कहा करे नेकी के काम को, तो बहरहाल क्यामत के दिन लग बता जाएगा। एक एक नेकी इतनी भारी होगी उस दिन, एक एक नेकी के ऊपर एक इंसान इस तरह नजर रखेगा जैसे कभी सफर के दौरान आपका पर्स गुम जाए और आप इधर उधर रखी हुई कुछ रेजगारी जमा कर रहे हो, किसी तरह टिकट लेकर घर पहुंच जाओ। और यहां नहीं भी पहुंचेंगे तो क्या होगा, कोई ना कोई राइड दे ही देगा। वहां हम एक ऐसी दुनिया में खड़े किए जा चुके होंगे कि जहां हमारे इर्द गिर्द सिर्फ तन्हाई होगी और हम फिर वहां बेचैन हो रहे होंगे। वहां फिर इंसान के जन्नती और जहन्नमी होने के लिए कोई बहुत ज्यादा नंबरों का फर्क नहीं होता। देखिए, आप में से अपने पढ़ने के दौर को याद करके सोचिए, कई दफा सिर्फ फर्स्ट और सेकंड के बीच में एक ही नंबर की कमी नहीं होती, सिर्फ एक पॉइंट। यहां तो पॉइंट चलते हैं ना, कोई एक पॉइंट आपको सेकंड पे ले आता है तो आपका दिल को खुश होता है। लोग कह रहे हैं शुक्र है तुम सेकंड आए हो, हम तो जरा पास में, तो आप कहते हैं नहीं, क्या होता अगर मैं फर्स्ट आ जाती। फिर बंदे को अपना गम आता है, हाय वो सवाल जो मैंने ऐसे ही केयरलेसली छोड़ दिया, ना छोड़ती, या वो जो कल शादी में चली गई थी ना जाती और कुछ और पढ़ लेती, ऐसी है ना। तो वहां क्या होगा, एक एक छोटी छोटी कमी याद आएगी बंदे को। और उस वक्त फिर हर इंसान के अमालनामे तुलने पर एक फरिश्ता ऐलान करेगा, नाम लिया जाएगा आपका, मेरा फुला इब्ने फुला, और आप और मैं औरतें हैं ना, तो फुला बिनते फुला कामयाब हो गई, या फिर फुला इब्ने फुला या फुला बिनते फुला नाकाम हो गई। अपने लिए सोचिए, हम अपने बारे में कौन सी आवाज सुनने की उम्मीद रखते हैं, और अल्लाह हमें कामयाबों में रखे। लोगों के अमालनामे हम ये भी देख चुके कि ईमान और अकीदे के मुताबिक उनका वजन होगा। कुफार, मुशरिकीन, मुर्तद जो दीन छोड़ गए, और मुनाफिकीन, इनके ढेर होंगे, हीप्स, बड़े बड़े गट्ठर। लेकिन रुई के गट्ठरों की तरह, या आपने देखा होगा कि इंसुलेशन के लिए जो स्टीरियो फोम नहीं आता, कितना बड़ा होता है, उठा लें तो सकते कि बच्चा भी उठा ले। बड़े बड़े अमाल पर वजन जीरो। इसके बरक्स एक मोमिन के नामे अमाल में 99 रजिस्टर गुनाहों से भरे होंगे, यानी कापियां लिख लिख के भरी हुई हैं गुनाहों से। कभी ऐसा भी होगा? और अल्लाह के सवालों के जवाब में वो अपने गुनाहों का इतराफ करेगा, पीछे आपको सुना चुकी हूं। तो अल्लाह ताला कहेंगे जाओ इसके अमाल मीजान में तोलो। वो 99 दफ्तर यानी अकाउंट कीपिंग रजिस्टर्स एक पलड़े में रखे जाएंगे, पलड़ा भरेगा, झुकेगा, हैवी होगा, और उसके बाद सिर्फ एक मामूली टुकड़ा, एक कागज का टुकड़ा जिस पर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्ला लिखा होगा, कलमाए तौहीद। जो ही वो रखा जाएगा तो वो दफ्तर गुनाहों के वो ऊपर हो जाएंगे और ये नीचे हो जाएगा। इस कलमे की कदर तब आएगी जाके, यहां तो हमें पता ही नहीं, हम यहां 1,25,000 पढ़ के रख लेते हैं, हमें पता ही नहीं होता, हर चीज में हमारा शिर्क चलता। जो इमाम आदिल की बात हमने पढ़ी थी, तो याद रखिए कि अदल का सबसे पहला इजहार यह है कि तौहीद। सूरत अल आराफ के बिल्कुल शुरू में या दिलून का लफ्ज आता है, बिरब्बिहिम या दिलून, अल्लाह नाम के शुरू में शायद आता है। तो क्या पता चला कि इंसान का अकीदा, अल्लाह से ताल्लुक, उसे बहुत भारी होगा। मीजान उन तीन जगहों में से एक है, वन ऑफ थ्री, के ला यस्कुरु अहदुन अहदा, जहां कोई आदमी किसी दूसरे को याद नहीं रखेगा, ना उनकी मदद करेगा, ना उसके काम आएगा। हजरत आयशा सिद्दीका के एक सवाल के जवाब में अल्लाह के नबी ने कहा था, बड़े लाड से उन्होंने पूछा था कि अल्लाह के नबी, आप मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं और आप अपनी अजवाज से मोहब्बत करते हैं, क्या आप क्यामत के दिन हमें याद रखेंगे, यानी हमारा ख्याल करेंगे? तो आपने कहा रखूंगा। हां, लेकिन आयशा, तीन मुकाम ऐसे हैं कि ला यस्कुरु अहदुन अहदा, कोई वहां एक दूसरे को याद नहीं रखेगा। सारे मैदान हशर में कोई भी उसे एक नेकी देने के लिए तैयार नहीं होगा। यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखी व अबी और उम्मीही, और पूरे रिश्तों की लिस्टें हैं तैयार की गई। सूरह बस पढ़ लीजिए, सूरह मारिज पढ़ लीजिए, न बाप न बेटा न बेटी न बीवी न दोस्त बेली यार, कोई पीर, कोई मुर्शद, कोई वली, कोई लंगोटिया, फर्स्ट फ्रंट सब वहां दूर भाग रहे होंगे, क्यों भला? लिकुल इमरे मिनहुम यौमज़िन शानी युगनी, हर एक की उस दिन कैफियत ऐसी होगी जो उसको दूसरों से बेनियाज कर देगी। और इसके बाद फिर इसी जगह हौज़े कौसर भी होगा। अल्लाह के नबी अपनी उम्मत को ढूंढ ढूंढ कर अपने हौज से पानी पिला रहे होंगे। इसके बारे में अगर आप चाहें तो डिटेल्स मौजूद हैं, इस पे एक अलग भी लेक्चर मुझे याद है। और क़यामत का बयान जो इकबाल केलानी साहब की बुक पढ़ी हमने पूरी माशाल्लाह, उसमें सिर्फ आप हौज़े कौसर वाला बाब पढ़ लीजिए। इसी तरह जब ज़िंदगी शुरू होगी, अबू यहया साहब की किताब है, आज से कोई मेरा ख्याल कई साल पहले पढ़ाई थी, उसमें भी इसके बारे में है। तो हौज़े कौसर का मामला यहाँ होगा। मीज़ान तक ईमान वाले और मुनकरीन दोनों साथ थे, ऐसे ही था ना। हौज़े कौसर पे क्या हुआ? ट्रैक चेंज हो गया, बाईपास कर दिए जाएंगे मुनाफिकी, निफाक वालों को हौज़े कौसर से नहीं मिलेगा। हत्ता कि ये नमाज रोजा करके आए होंगे। अल्लाह के नबी इस मौके पर लोगों के वजू के चमकते हुए निशानों से पहचान रहे होंगे, तो लोगों को आता देखेंगे, तो आप उनको हौज़े कौसर का पानी वो देना चाहेंगे, तो फरिश्ते आ जाएंगे। अल्लाह के नबी ठहरिए, आपको नहीं पता कि इन्होंने आपके बाद आपके दीन को कैसे बिगाड़ दिया था, यानी इन्होंने आपके दीन में इजाफे किए थे। अल्लाह के नबी कहेंगे फसुक्कन सुक्क लिमन गैरा, उनको पीछे कर दो जिन्होंने बदल दिया मेरा दीन मेरे बाद। तो उनको हटा दिया जाएगा कि हौज़े कौसर से ईमान वाले फायदा उठाएंगे। अल्लाह हमें उसी में कर दे। ये एक इम्तिहान था, अहले ईमान का भी इम्तिहान था, सबसे मुश्किल और आखिरी मरहला सरात का है, पुल सरात। वइन मिनकुम इल्ला वारिदुहा, सूरत मरियम में आता है, तुम्हें हर एक उसमें से वारिद होना है। और वरदा यारिदु क्या कहते हैं? पानी के ऊपर से गुजरने को। ये आग के ऊपर से गुजरना है, जहन्नम के ऊपर होगा। वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, मोमिन भी हैं, मुनकिर भी हैं और मुनाफिक भी हैं। तीनों के लिए सबसे पहले नजर आने वाली चीज जहन्नम होगी। जहन्नम के ऊपर पुल सरात होगा और फिर आगे जन्नत। मुनाफिक जिनको अल्लाह चाहेगा और मुनकिर जिनको अल्लाह चाहेगा, वो जहन्नम में रोक लिए जाएंगे पुल सरात से, लेकिन मोमिनीन बड़े प्यार से गुजरते हुए जन्नत में पहुंच जाएंगे। ये बहुत मुश्किल मरहला होगा, बाल से बारीक, तलवार की धार से ज्यादा तेज, और जहन्नम के ऊपर रखा जाएगा और लोग इससे गुजरेंगे। असल में मुझे ऐसे लगता है कि ये डिसेक्शन रूम है, जो अभी अंदर थोड़ा बहुत गंद वाला रह गया था ना, वो इधर उतरेगा। ये आखिरी स्टेज है। कुछ लोग गिरा गिरा के दिए जाएंगे, हर इंसान को उसके अकीदे और अमाल के मुताबिक सिरात के लिए नूर दिया जाएगा। अहले ईमान वालों को दो नूर की मिशलें दी जाएंगी, कैंडल्स, बस को एक दी जाएगी। कुछ लोग टिमटिमाते टिक टिक, जैसे जलता बुझता बल्ब नहीं होता, टिमटिमाते चिराग की रोशनी दी जाएगी। हत्ता के पुल सरात पे सबसे कम दर्जा उस शख्स का होगा जिसके पाँव के अंगूठे पर रोशनी होगी, टार्च। आप देखें कि आज आपके फोन में भी टार्च होती है, अंधेरे में हो तो जलाएं तो वो जैसे बीप सी गुजरती है ना लाइट की, बस वहां रोशनी होती है। सोचे नीचे आग है और ये दुनिया की आग नहीं, और ऊपर एक बीप सी है। और अहले ईमान फिर पुल सरात से गुजरते हुए अल्लाह तला से दुआ मांगेंगे, रब्बना तमिम लना नूरना वग़फिर लना इन्नक अला कुल्ली शयइन क़दीर। ये सूरह तहरीम की आयत नंबर 8 है। क्या हमारे रब हमारा नूर पूरा कर दे, यानी आखिर तक रखना, ये ना कि बीच में हमारी लाइटें बंद हो जाएं। कभी बैटरी बंद हो जाती है और आपके पास चार्जर नहीं होता तो सारा कुछ डिलीट हो जाता है। अल्लाह ना करे अब भी मेरे इस लैपटॉप की बैटरी बंद हो जाए और चार्जर ना काम करे, तो जब दोबारा खोलेंगे ना तो ये जितना मैंने अभी तक बोला ये सब रिकॉर्डिंग ज़ाया हो जाएगी जो कंप्यूटर में हो रही होगी। अगर तो वहां भी गम ये होगा कि हम फंस ना जाए, किसी तरह निकल जाए। और हमें बख्श दे तो हर चीज पर कादिर है। बस अहले ईमान बिजली की तेजी की तरह पुल सिरात अबूर करेंगे, बस हवा की तेजी से, बस तेज रफ्तार घोड़ों की रफ्तार से और बस ऊंटों की रफ्तार से, बस दौड़ते हुए, बस आम चाल जैसे आप नॉर्मल वॉक करते हैं, बस सुस्त रहोगे, बस गिरते पड़ते ठोकरें खाते और जख्मी होते हुए अबूर करेंगे। पुल सरात के किनारों पर हुक्स हैं, क्लिप्स, जो चलते हुए लोगों को रुकावट डालेंगे, उलझेंगे। जैसे सड़क पे कहीं ना कोई रुकावट हो, कुछ हो, या चलते हुए कोई चीज फंसती है, और बास लोगों को पुल के ऊपर ही बार बार गिराते रहेंगे, बास को जख्मी करेंगे, और यही कुलूब बास लोगों को खींच कर जहन्नुम में डाल देंगे। कई लोग उन कांटों के, उन हुक्स के जरिए लटकाए जाएंगे, फिर वहां से गंदा खून निकलेगा, हराम का खून, गंदी बातें, बेकारगी, बेहूदगी। वो औरतें जब अपने नसब में कोई दूसरा बच्चा ले आती हैं, नाजायज ताल्लुकात दूसरों से, वहां जाकर समझ आएगी। और कुछ लोग अभी चंद कदम ही आगे चलेंगे ना, उन्हें जहन्नुम में गिरा दिया जाएगा। बस कुछ फासला तय कर लेंगे तो जहन्नुम में गिरा दिए जाएंगे, और बस बिल्कुल मिड में पहुंच जाएंगे ना, उसके बाद गिराए जाएंगे, जैसी करनी वैसी भरनी। और बास बिल्कुल सिरात को अबूर करने के करीब होंगे, जैसे जहाज पूरा 10 घंटे की फ्लाइट चल के आ गया, लैंड होने से पहले गिर गया, बिल्कुल लैंड पे गिराए जाएंगे। और इंसान के फिर अमाल जो अच्छे होंगे ना, वो वहां रोशनी बनेंगे और उसकी हिफाजत करेंगे। यहां तक हदीस में आता है कि कुर्बानी की जानवर जो है ना, ये सिरात पे तुम्हारी सवारियां होंगी। और इतना हौलनाक मंजर होगा पुल सरात से गुजरने का, किसी की जुबान पे कोई लफ्ज नहीं होगा, सिर्फ अंबिया कराम की जुबान पर एक जुमला होगा, रब्बी सल्लिम, रब्बी सल्लिम, या रब बचा ले, या रब बचा ले, यानी सलामत रख दे। और सबसे पहले अल्लाह के नबी और आपकी उम्मत इस पुल को अबूर करेगी, फिर दूसरे नबी और उनकी उम्मतें। अल्लाह हमें अपनी इस नेमत की ही कदर करने वाला बना दे। और ये जो पुल सरात है ना, इसका बिल्कुल जो लास्ट एज है ना, यानी बस कह लें कि वो ब्रिज ऐसे दो के बीच में और दूसरी तरफ जन्नत है, इसका नाम कंतरा है, काफ नून तोरा, कुरान में किनतार, हीप्स ऑफ गोल्ड, सोना चांदी, सूरह आल इमरान की आयत 13 है गालिबन, जुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहवात, वो वाली आयत है, यानी वहां कुछ लोग रोक दिए जाएंगे। ये बड़े गौर से सुनिएगा, पुल सरात का ये आखिरी हिस्सा कंतरा, ये हकूकुल इबाद से मतलब होगा। जिन मुसलमानों के दरमियान कोई गलत फहमी होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई गिला होगा, शिकवा होगा, कंप्लेन्स, वो इस जगह जाकर दूर की जाएगी। यहां ही वो वाकयात है कि दो लोग झगड़ रहे हैं, वो कहते हैं मुझे अपनी नेकियां दो, और वो जो है ना मल मुफलिस, मुफलिस कौन है, तो कहा कि न मुफलिस हो मिन उम्मती, मेरी उम्मत का मुफलिस वो है कि जिसके पास दिरहम दिनार नहीं बल्कि नेकियों के ढेर होंगे, लेकिन लोग आते जाएंगे और उसकी नेकियां लेते जाएंगे। ये सारा कुछ इधर होना है। आप नेकियों के ढेर से बैठे मैं लेके, कि मैं तो तहज्जुद बड़ी पढ़ती थी, मैं तो उम्रे पे भी जाती थी, मैं तो ये भी करती थी, लेकिन कोई शख्स आया और उसको आपने गाली दी हुई थी, किसी की बुराई की हुई थी। और मैं आज के दौर की बात कह दूं कि सारे सियासतदान जिनकी आज आप सारा दिन बैठकर लतीफे और जुगते सुनते हैं ना, वो सारे आपकी नेकियां ले जाएंगे। एक तो वो हुक्मरान, चलो जैसे भी थे, आपने चूज किया, और फिर आप उनकी गीबतें कर रहे हैं, फिर उनके ऊपर झूठ बोलते हैं, फिर आप उनकी मजाक करते हैं। आज उम्मत का मिजाज बदल गया, बिगड़ गया। तो पुल सरात पे जाकर मेरी नेकियां आपके हाथ में आएंगी और मैं कंगाल खड़ी हूं, बैंकरप्सी होगी, या फिर कुछ लेन देन होगा, मैं और आप बैठकर वहां मुकमका करेंगे, कुछ का अल्लाह तला करवाएंगे। जब अहले ईमान के दिल बिल्कुल पाक और साफ होंगे, कि अल्लाह मेरे दिलों से पिछले लोगों के लिए गिल निकाल दे, जब तक दिल शीशे की तरह साफ नहीं होगा, आपको मुझे जन्नत में एंट्री नहीं मिलेगी। देखिए, आप इमिग्रेशन को जहन में लाइए, किसी को स्पॉन्सर करके कोई नॉर्वे बुलाता है, ऐसे ही आने देते अंदर, एक एक कागज चेक करते, फिर कोई एक चीज कम दिखी, जाओ भाई भाग जाओ। ये वीजे को आराम से लग जाते हैं, पहले आप कहते हैं एयरपोर्ट पर आकर वीजा मिल जाता था, तभी तो फिर एक एक बंदा चार चार लड़कियां लेकर आया ना, बीवियां बनाकर। इस मुल्क में पूरे पूरे खानदान कैसे आ गए, मामू ने सारी भतीजियां भांजियां मंगा ली, लड़के कहते थे हमने निकल, कहते ला के छोड़ देना, हमने तो बुलाना, तो वो वीजे मिलते, आज नहीं मिलता। इसलिए नहीं मिलता कि हमने अपना आप दिखा दिया ना, ये हमने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी। तो ये इमिग्रेशन है, विंडो इमिग्रेशन की बड़ी मुश्किल होती है। आपके कुछ भी गलत ना हो ना, फिर भी एक दफा बंदा जरूर सोचता फंस ना जाए, कोई गड़बड़ ना हो जाए। आपको गवर्नमेंट से कोई काम पड़ जाए, आपको इसी मस्जिद की कोई एक्सटेंशन करनी करानी है, ये फिक्र हो जाएगी कि कहीं बंद ही ना करा दें, कि ये भी छोड़ दो, तो वहां आखिरी वक्त तक दिल धड़केगा। और जब सारी क्लियरेंस मिल गई तो फिर जन्नत के पास जाएंगे तो वहां अल्लाह के नबी सल्लम मौजूद होंगे और आपके मुंतजिर होंगे। दुआ करें कि अल्लाह जब हम जन्नत में जाएं तो हमारे प्यारे नबी वहां हमारे होस्ट हों, वो हमारा रास्ता देख रहे हों। और सबसे पहले जब अल्लाह के नबी के लिए जन्नत खुलेगी, आप अंदर जाएंगे, तो जाते ही आपको सबसे पहली फिक्र अपनी उम्मत की होगी, अल्लाह मेरी उम्मत का क्या बना। अल्लाह करे कि जितनी मोहब्बत नबी को अपनी उम्मत से थी ना, कम से कम है उतनी तो हो जाए। हालांकि हमें उससे भी ज्यादा होने की कोशिश करनी है, जो हो नहीं सकती, लेकिन आप पूछेंगे तो वहां आपको बताया जाएगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत के काफी लोग तो इधर आ गए, लेकिन बहुत सारे जहन्नुम में गिरा दिए गए बुलसरात से। ये सुनते ही आप सजदा रेज हो जाएंगे और अल्लाह की तारीफ करेंगे, सिफारिश करेंगे, एक तवील मुद्दत आप सजदे में गुजारेंगे। फिर हुक्म होगा कि सर उठाओ ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी। और कहा जाएगा जाओ, मोहम्मद की उम्मत में से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके दिल में जौ बार ले, जौ के दाने के बराबर भी ईमान हो, इन्हें जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डाल दो। फिर अल्लाह के नबी फरिश्तों को लेकर अपनी उम्मत के इन लोगों को निकालने के लिए अपने साथ नेक लोग इस उम्मत के भी चुने हुए आइमे कराम, मुहद्दसीन, उलमा, जो अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से गुजारगी, उनको साथ लेकर जहन्नम के किनारे तक जाएंगे और फरमाएंगे अपने अपने अजीजों अकारिब और अपनी अपनी जान पहचान के लोगों की निशानी बताओ ताकि फरिश्ते इनको निकाल लाएं। यानी ये एक बंदे की ये दूसरे के लिए सिफारिश भी होगी। फिर जिस जिस के दिल में थोड़ा सा भी ईमान था, फरिश्ते उनको लाएंगे। और आपको पता है कि अल्लाह के नबी की उम्मत जन्नत का 1/4 होगी, पूरी जन्नत में यानी 25% अहले जन्नती जो हैं वो उम्मत मोहम्मदिया में से होंगे। जो ही अल्लाह के नबी की ये सिफारिश होती देखेंगे ना, तो बाकी अंबिया कराम भी अपनी अपनी उम्मतों की सिफारिश शुरू कर देंगे, उनकी भी सिफारिश होगी। याद रखिए, हर नबी की सिफारिश है। फिर इसी तरह अल्लाह के नबी की उम्मत के शहीद, आलिम, औलिया और सुलहा को भी शिफात की इजाजत दी जाएगी। हर बंदा अपने अपने करीब के जान पहचान के लोगों की सिफारिश करेगा और फिर उनको जहन्नम से निकलवा कर जन्नत में ले जाएगा। क्या चाहते हैं हम? आप कहते शुक्र है निकल आएंगे। आप निकलने वालों में होना चाहते हैं या निकलवाने वालों में? एक भाप पड़ जाए ना उंगली में तो कितने दिन छाला रहता है। तो हम निकलवाने वालों में हो कि निकलने वालों में हो? बहरहाल जब सब निकल निकाल जाएंगे तो अल्लाह के नबी जन्नत में पहुंच कर फिर पूछेंगे अल्लाह के नबी, आप मेरी उम्मत में से कितने जहन्नुम में बाकी हैं? तो आपको बताया जाएगा अभी तो हजार हा बाकी हैं जहन्नुम में। आप फिर सिफारिश के लिए वही काम करेंगे, सजदे में गिरेंगे, फिर आपको इतने शिफात मिलेगा और आपकी उम्मत के वो लोग जिनके दिल में चूंटी या राई के दाने के बराबर भी ईमान आ जाएगा उनको भी ले आओ। आप फिर सारे नेक लोगों को लेकर पहुंचेंगे और लोगों को लाएंगे और इनके आने के बाद जन्नत में उम्मत मोहम्मदिया की तादाद 1/3 हो जाएगी। पहले 25% थी, अब 33.3% हो जाएगी। आप फिर आके पूछेंगे कि आप मेरी उम्मत के कितने लोग हैं वहां? कहा जाएगा अभी भी हजारों उम्मती हैं उधर। फिर दोबारा वही कुछ होगा और कहा जाएगा चींटी या राई के दाने के बराबर जिनके ईमान है उनको भी निकाल लो और आप फरिश्तों और नेक लोगों के साथ जाएंगे तो जिनके दिल में थोड़ा भी ईमान होगा उनको लाएंगे। इनके आने के बाद जन्नत में उम्मत मोहम्मदिया की तादाद नेस हो जाएगी। हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ जन्ना विल बी फ्रॉम उम्मत मोहम्मदिया। और उसके बाद आपको पता क्या होगा, चौथी दफा अल्लाह के नबी फिर सिफारिश कराएंगे और अब आपकी सिफारिश किसके हक में कबूल होगी? जिसने जिंदगी में एक बार भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा। आपने फरमाया उसे मैं खुद जहन्नुम से निकालूंगा। और फिर जब वो लोग जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल करेंगे। यानी शुरू में तो अल्लाह के नबी के कहने पे, बिल आखिर जो आखिरी होंगे ना, उनको अल्लाह ताला खुद निकलवाएगा। और आपको तो जन्नती लोगों के इस गिरोह को क्या कहा जाएगा? उतका, अतीक का लफ्ज़ सुना ना, वही लफ्ज़ है आइन से। उतका जमा है उसकी, उतका और रहमान, रहमान के आजाद करदा। उनके माथे पे लिखा होगा, जब वो जन्नत में जाएंगे ना, तो दूसरों को दूर से पता चल जाएगा ये जहन्नुम से आजाद हुए हैं। और इस तरह से शुरू में कहते हैं कि वो लोग देखेंगे तो इनको जरा सा अजीब लगेगा, और बाद में फिर इनको मिटा दिया जाएगा। तो ये है जी जन्नत या जहन्नम, टूटी यहां पे कमन। ये दुनिया ना जन्नत है ना जहन्नम है, ये दुनिया दारुल अमल है, ये इम्तिहान का है। लियाब्लुवक्कुम अय्युकुम अहसनु अमला, शिफात का सिलसिला पूरा होगा, तमाम अहले जन्नत जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। अब वहां ख्याल आएगा, बच्चे किधर गए, माँ बाप किधर हैं, प्यारे किधर हैं। फिर तजस्सुस पैदा होगा औलादों से और रिश्तेदारों से मिलने का, और वो ख्वाहिश करेंगे कि अल्लाह ताला हम अपने रिश्तेदारों को मिलना चाहते हैं, मेरे बच्चे किधर हैं। ये ऐसी सोचे ना, जहाँ बहुत बड़ा क्योस है और लोग पहुंच गए, चढ़ गए, अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो अल्लाह ताला कहेंगे, इनकी औलादों को इनसे मिला दो।